का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा मधुबन तुम्हारे बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, दुनिया की नौका ओ, दुनिया की नौका लगा दूं किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा।
ओम शांति। 17 जनवरी 2019, अव्यक्त माह की अव्यक्त पुकार, शांति स्तंभ के 18 अभिलोकों में आज का अविनाशी ज्ञान धन दान करो। अविनाशी ज्ञान धन क्या करो? दान करो। कब तक? देवेंद्र भाई, आज की मुरली से कब तक दान करो? कब तक दान करो? जब तक समझा समझा कर गला ना घुट जाए तब तक दान करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, खान पान को छोड़कर भी। आज की साकार मुरली, खान पान की परवाह न करते हुए भी क्या करो? ज्ञान दान करो। जैसे मैं करता हूं, मुझे कोई आश नहीं, मुझे कोई तमन्ना नहीं, मैं कुछ खाता नहीं। शिव बाबा को यदि टोली दे तो वो क्या खाएगा? भगवान ने प्रश्न पूछा है साकार मुरली में। यदि शिव बाबा को टोली दिए तो वो खाएगा? नहीं खाएगा। मैं कुछ खाता नहीं, मैं कुछ पीता नहीं, मैं कुछ मांगता नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरी कोई आश नहीं, मेरी कोई तमन्ना नहीं, मैं केवल ज्ञान सुनाने आया हूं, मैं केवल पतित से पावन बनाने आया हूं। तो जो बच्चे सेवा करते हैं खान पान की परवाह न करते हुए भी, कब तक सेवा करो? जब तक गला कन्हैया भाई, कब तक सिखाते रहो दूसरों को? जब तक गला ना घुट जाए तब तक समझाते रहो। यहां रहते हैं परंतु सेवा नहीं करते तो बाबा उनको ज्ञानी नहीं कहते। तो अविनाशी ज्ञान धन क्या करो? दान करो। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए आज का विशेष पुरुषार्थ। ब्रह्मा बाप समान किसी भी बात के विस्तार में न जाकर, विस्तार को क्या करो, विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। विस्तार में दोष क्या है, विस्तार की त्रुटियां क्या है, विस्तार की हानियां क्या है, विस्तार से क्या होता है, भटक जाता है व्यक्ति, जितना विस्तार में जाएगा उतना भटकता है। विस्तार से क्या होता है, संकल्प बहुत चलते हैं, अति में जब जाता है अति सर्वत्र वर्जते, जहां अति है वहां पर विस्तार है, वहां पर विनाश भी है, वहां भटकाव है, वहां संकल्प तेज हो जाते हैं। और क्या होता है विस्तार में, विस्तार में विस्तार दलदल है जिसमें फंसते चले जाते, धसते चले जाते, विस्तार में सार खो जाता है, विस्तार में अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, विस्तार में लक्ष्य भूल जाता है, इतना विस्तार कर रखा है, इतना विस्तार कर रखा है कि लक्ष्य ही भूल गया, और विस्तार में असमंजस की अवस्था है, दुविधा की अवस्था है, बीच भंवर में फंस गए ऐसी अवस्था है, ना इधर के ना उधर के, त्रिशंकु की तरह बीच की अवस्था है, समझ नहीं रहा है, जीवन अनिर्णय की अवस्था है, शेक्सपियर के हैमलेट की तरह टू बी और नॉट टू बी की अवस्था है, क्या करूं कि नहीं करूं। और विस्तार में, विस्तार में कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल तो तब होता है जब छोटा कुछ हो, बहुत ही फैला दिया किसी ने तो कंट्रोल नहीं रहता, संयम खो जाता है। विस्तार में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, आज की मुरली में कहा है बाबा ने टाइम वेस्ट बहुत करते, सर्विस नहीं करते और टाइम वेस्ट करते रहते बच्चे। विस्तार में ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ऊर्जा में ऊर्जा, विस्तार में ऊर्जा का क्षय होता है, और एक के साथ तार टूट जाती है, और मूल हाथ से निकल जाता है। विस्तार में, विस्तार वृक्ष है विस्तार का, वहां पर बिंदी खो जाती है। विस्तार में अहंकार कि मेरा इतना बड़ा विस्तार है, ये मेरी वंशावली है, ये मैंने इतना एक्सपांड किया है, तो वो जो विस्तार फूल जाता है व्यक्ति विस्तार से। एक कार कंपनी का मालिक होता है तो वो एक नई कार बनाता है बहुत सुंदर वाली, और कंपनी के अंदर वो कार बनती है, पर कार बनकर जब रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है और उसको बाहर निकालना होता है, एक मुश्किल आ जाती है। मुश्किल ये होती है कि जो दरवाजा है वो थोड़ा सा छोटा है, कार को अगर निकाले तो ऊपर से खरोचे आ जाएगी, वो गड़बड़ हो गई। तो किसी ने सजेस्ट किया, पेंटर ने, निकाल दो कुछ नहीं होता है, मैं वापस पेंटिंग कर दूंगा, जो खरोच आ गई ना उसको मैं ठीक कर दूंगा। इंजीनियर ने कहा ऐसा नहीं करो, ऐसा करते हैं ये जो दरवाजा है, कार तो अंदर है, निकालना है थोड़ा सा बस प्रॉब्लम है, तो ऐसा करो थोड़ा सा तोड़ दो इस दरवाजा को, बाद में हम रिपेयर कर देंगे। तो उनकी बहुत, कई लोग कई सारे सजेशन देते, ऐसे करो वैसे करो, नुकसान तो होना है। वहां पे एक वॉचमैन खड़ा होता है, वो सारा दृश्य देखते रहता है, वो कहता है क्या मैं कुछ बताऊं, वो कहते ये क्या बताएगा, तो क्या बताता है वो, गाड़ी की थोड़ी सी हवा निकाल दो बस, हवा बहुत भरी है, जब तक थोड़ी निकलेगी नहीं ना हवा कार बाहर नहीं आएगी। विस्तार ने हवा बहुत भर रखी है, विस्तार का अहंकार बहुत है, जो थोड़ी सी हवा भी कम कर दो मधुबन में और विस्तार से क्या होता है प्रकाश भाई, ब्रेक फेल विस्तार में गाड़ी थोड़ी फास्ट जाती है, विस्तार व्यर्थ की ओर ले जाता है। स्लोगन क्या है आज का, कौन सुन के आया, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए क्या अवॉइड करो, व्यर्थ और निगेटिव अवॉइड। और विस्तार से विस्तार जाल है जिसमें व्यक्ति फंसता ही जाता है, खुद ही बुनता है और खुद ही फंसता है। और विस्तार कभी कभी किसी और को फंसाने के लिए हम करते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव। एक इंग्लिश कवि लिखता है, हमने ऐसा एक जाल बुना जब पहली बार सोचा किसी को फंसाए और उसमें खुद ही फंस गए। विस्तार में आकर्षण बहुत है, नई नई चीजें दिखाई देती है विस्तार में। कॉम्पिटिशन इसका इतना, हमारा उतना होना चाहिए, उनके 100 स्टूडेंट हमारे 200 होने चाहिए, उनका वो प्रोग्राम हमारा उससे बड़ा होना चाहिए। विस्तार वाला अंदर से खाली रहता है। विस्तार में इच्छाओं का विस्तार है, ढेर सारी इच्छा है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करूं। और इच्छाओं का स्वभाव है अतृप्ति, इच्छाओं का स्वभाव है अतृप्ति। और विस्तार में भोग विलास है, और विस्तार में साधना खो जाती है, और विस्तार में तप समाप्त हो जाता है, और विस्तार में वैराग्य कहीं नहीं रहता। स्वयं स्वयं के जीवन को देखना है, किसमें मैंने विस्तार कर रखा है, किसी संबंध में धन का विस्तार किया है, विचारों का, व्यर्थ का, अतीत का, पुरानी यादों का, भविष्य चिंताओं का, मोह का, फैमिलियरिटी का, टुगेदरनेस, इंटीमेसी, किसका विस्तार किया है? सोशल विस्तार, सोशल मीडिया का विस्तार, डिजिटल विस्तार, डिजिटल एक्सपांशन। पिछले 10 साल में जो आत्माओं की स्थिति है सारे विश्व भर की, 10 साल से पहले थोड़ी ठीक थी। 10 साल में जो स्थिति है और जो माया अभी है, अगर 10 साल पहले देखे थोड़ी ठीक थी, क्योंकि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने दुनिया को क्या बना दिया? बाह्यमुखी। आज की मुरली में सारी दुनिया बाह्यमुखी है, तुम अंतर्मुखी हो, मुरली की लास्ट लाइन। इस सारी दुनिया बाह्यमुखी है और केवल तुम ही अंतर्मुखी हो। तो बाबा कह रहे ब्रह्मा बाप समान, क्या करो? किसी भी बात के विस्तार में न जाओ, जहां विस्तार होगा वहां भटकाव होगा। विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा दो। क्या करो? विस्तार को बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो और समा दो। इसका मत ये भी नहीं सोचो कि अभी मैं इस विस्तार को कैसे ठीक करूं, ये ठीक करूं, वो ठीक करूं, फुल स्टॉप। बस यही विधि है, फुल स्टॉप। उस फुल स्टॉप में, उस पूर्ण विराम में सारा विस्तार समा जाएगा। बिंदी लगा दो, बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ, तो सारा विस्तार, सारा जाल सेकंड में समा जाएगा और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। तो ये है आज का अभ्यास, 17 तारीख। आज अभ्यास करना है मैंने कौन कौन से विस्तार कर रखे, और यदि वो किए हैं उनको मैं कैसे समेटूं। पहले तो संकल्प चाहिए, ये विस्तार मुझे स्टॉप करना है, क्योंकि इस विस्तार में जाने से कुछ नहीं होने वाला है। दो व्यक्ति है, ए और बी, आ और बा, दोनों के संबंधों में विस्तार हुआ है, घृणा का, नफरत का, लगाव का, या झुकाव का, या प्रेम का, या फिर वासना का। कितना भी बैठकर चिंतन करे, कितना भी बैठकर डिस्कशन करे, कितना भी बैठकर कॉन्फ्रेंस करे, मीटिंग करे, वो विस्तार और ही बढ़ने वाला है। विधि क्या है? फुल स्टॉप। विधि है साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। क्या हो जाओ? अलग हो जाओ कुछ समय के लिए, स्पेस दो एक दूसरे को सोचने के लिए। दो व्यक्ति निरंतर संघर्षरत है, और निरंतर दोनों को भी समझ में आ रहा है कि हम दोनों संघर्ष में हैं, सोचते हैं थोड़ा बैठ के बात कर ले, वो ठीक करे ठीक चीजों को। तो विधि है साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, कुछ समय के लिए क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। इसके लिए साइकोलॉजी में कहा जाता है जो युगल है, पति पत्नी है, आपस में बीच बीच में डिस्टेंस हो जाना चाहिए, थोड़ा सा सोचने के लिए विचार भी चाहिए, टाइम चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं ठीक है या गलत है। ये जो संबंध है दो व्यक्तियों का, उस संबंध को समझने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए। इसके लिए इस साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, अलग हो जाना, ये विधि है एक। तो विस्तार तो बहुत सारे है, कौन से विस्तार है, संबंधों के और विचारों के, भावनाओं के, और विचारों के विस्तार की बहुत बड़ी कैटेगरीज है। कुछ विस्तार आज हम देखेंगे। सबसे पहला एक विस्तार है जिसको कहते हैं फिल्टरिंग। इसमें व्यक्ति क्या करता है, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के मन की बड़ी गहराई से अध्ययन किया, उसका साक्षी होकर देखा मनुष्य क्या सोचता है, कैसे सोचता है, किन परिस्थितियों में किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, साक्षी होकर देखा। आज के मुरली में भी है, जैसे बाप साक्षी होकर देखता है, तुम भी साक्षी होकर देखो, पढ़ाई कितना करते हैं, श्रीमत पर कितना चलते हैं, सेवा कितना करते हैं, तीन बातें। और दूसरी थी ये मनुष्य के मन को साक्षी होकर देखना, कैसे वो काम करता है, अपने ही मन को साक्षी होकर देखना कि मेरा मन, मैं खुद किन परिस्थितियों में किस तरह से व्यवहार करता हूं। तो एक टेंडेंसी, एक स्वभाव मन का जहां विस्तार है उसको कहते हैं फिल्टरिंग। फिल्टरिंग में व्यक्ति कितनी भी सकारात्मक परिस्थिति हो उसमें से जो नकारात्मक चीजें हैं उसको बराबर ग्रहण करता है, निचोड़ता है वो, और फिर उसका विस्तार करता है। एक अच्छी परिस्थिति है, एक सेवा हो गई, उसमें निगेटिव क्या क्या हुआ उसकी लिस्ट उसके पास होती है, उसको बड़ा चिंतन मनन करके निगेटिव निकालना और फिर क्या करना, उसका विस्तार करना। जो लोग बड़े खुश है वो बात से, उनका अज्ञान दूर करना कि ये बात से खुश मत हो, इसमें ये निगेटिव चीजें भी है। उनके सकारात्मकता से जो खुशी उनके जीवन में आई है दूसरों के, वो नष्ट करना अपने चिंतन मनन से, इसको कहते हैं फिल्टरिंग। हर चीज से निगेटिव निकालना, हर चीज से अच्छी चीज हो कहीं ना कहीं एक निगेटिव तो पॉइंट हो गई, वो निकालना और उसका विस्तार करना, इसको कहते हैं फिल्टरिंग। दूसरा है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग क्या होता है, या तो ये अच्छा है या तो ये बुरा है, बस सीधा इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि इसको हमने ये करते हुए देखा इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आज सुबह अमृत वेले में देखा कि ये भाई सो रहा था, अब तक सुना तो बड़ा योगी है, आज से भोगी की कैटेगरी में चला गया, बस अभी इसको फॉलो नहीं करेंगे हम, सारी क्लासेस डिलीट कर दो क्योंकि इसको हमने ऐसा करते हुए देखा आज तो उसके प्रति जो सम्मान था और उसकी हमने जो मेंटल इमेज, एक मानसिक चित्र बना रखा था, ये तो बड़ा योगी है, आज से हटा दो उसको, अभी दूसरा ढूंढो जब तक कि वो सोते हुए नहीं दिखता तब तक इसके लिए जिस व्यक्ति को हम मानते हैं ज्यादा उससे दूरी रहना हमेशा, क्योंकि उसके नजदीक गए उसकी गलतियां दिखी तो फिर गए, थोड़ा बहुत जो सीख रहे थे वो भी गया। इसके लिए जिसके प्रति ज्यादा ही रिस्पेक्ट है उसको दूरी रखना उससे, उसके लिए भी ठीक है और अपने लिए भी ठीक है तो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग अर्थात लेबल ये कर देना कि ये ऐसा है, ये अच्छा है, और फिर और किसी की अच्छाई देख ली खादी कि बस उसके दीवाने, उसके पागल हो जाना, उसके पीछे प्रभावित हो जाना, उसके उससे इतना प्रभावित हो जाना, फिर उसने कुछ गलत भी कहा तो भी वो अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि जिसमें मोह होता है उसकी कोई भी चीज खराब दिखती ही नहीं, अच्छी ही दिखती है। वो कुछ भी करे उसका दोष देखने की आंख ही बंद हो जाती है। तो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, ब्लैक एंड व्हाइट डिस्टॉर्शन, पोलराइज्ड थिंकिंग इसको कहते हैं। ये भी बड़ा विस्तार है जो भटकाता है मन को। ये यदि हमारा स्वभाव है तो हमको इसे अपने ही मन को समझना है, भाव समान बनना, अर्थात अपने मन को समझना कि हे मेरे मन, तुझे क्या चाहिए, तू किस दिशा में जा रहा है। तीसरा है मैग्निफाइंग, राई का पहाड़ पर्वत बना देना। है बात छोटी सी परंतु उसका बहुत विस्तार करना और फैलाना उसको, और उसकी चर्चा करना बैठकर, दूसरों के अज्ञान को दूर करना कि तुमको ये भी नहीं पता, यहां रहते हो मधुबन में, पता नहीं, हम देखो एक दिन में आ गए और सारी मधुबन की इंफॉर्मेशन निकाल ली एक ही दिन में इतना बड़ा पराक्रम, सब पता चल गया हमको कहां क्या गड़बड़ है, और तुम यहां रह के क्या करते हो बुद्धू तो छोटी छोटी बातों को क्या करना, बड़ा करना, बड़ा करना, विस्तार करना, फिर अपने खर्च से उसमें क्या डालना, मिर्च मसाला घी, मेहनत करके उसको परोसना, थाली पर सजाना और दूसरों के सामने दे रखना वो प्लेट। तो ये सब क्या है, मैग्निफाइंग, कैटेस्ट्रोफाइजिंग इसको कहते हैं, महा विनाशकारी थिंकिंग है ये, विचारधारा है। इसके लिए क्या करना है, बड़ी बातों को छोटा और छोटी बातों को खत्म। पर बच्चे क्या करते हैं, जो है ही नहीं उसको छोटा बनाते हैं, और जो छोटा है फिर उसको बड़ा बनाते हैं। एयर ही नथिंग, जहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वहां से भी नई कहानी का निर्माण, और फिर उसका विस्तार और इसका प्रचार। इस प्रचार प्रसार में इतने व्यस्त है कि ज्ञान योग के लिए तो समय नहीं है, कि काम ही इतने सारे हैं सुबह से लेकर रात तक, और इसी विस्तार में तो कहां से योग लगेगा, कहां से तपस्या होगी। मैग्निफाई करना, उसके बाद ब्लेम, दोष इसके वजह से, इसने ऐसा किया, मेरी जो वर्तमान सिचुएशन है इसके वजह से, भूले नहीं है उस व्यक्ति को कि जिसने कभी दुख दिया था और उसकी वजह से आज मैं यहां हूं। विदेश में एक सबसे कम उम्र की संत है, सेंट मैरिया ऑफ इटली, 11 साल की है थी। विदेश में जितने संत हुए होंगे विश्व भर में, महिला संत या फिर सारे संत, उसमें से ईसाई धर्म में मैरिया जो थी 11 साल की थी केवल, उसकी डेथ हो गई और उसको संत का खिताब पदवी दी गई। ईसाई धर्म में संत की पदवी तब दी जाती है जब आप मरो और आपकी वजह से किसी को साक्षात्कार होना चाहिए, तो उसके बाद ही आपको संत की पदवी मिलेगी, तब तक नहीं होगी। या फिर आपकी हड्डियों से किसी को बीमारी बीमारी ठीक होनी चाहिए, जो कब्र है ये सब होना चाहिए, कैनोनाइज्ड और बियटिफिकेशन जिसको कहते हैं, ये सब बाद में होना चाहिए। वो जो मैरिया थी 11 साल की थी, उसके पिता चल बसे और फिर उसकी माँ और उसके भाई कहीं खेत में काम कर रहे थे और वो जिस घर में रहती थी वहां पर एक लड़का था 20 साल का अलेक्जेंड्रिया, और उसकी कुदृष्टि उस पर पड़ती है और वो कई बार उसके पास आने की कोशिश करता है, पर वो हमेशा, वो बहुत प्योर किस्म की वर्जिन एंड वेरी प्यूरिटी चीज जिसे बहुत प्यार रहता है, और वो एक बार आता है और उसका हाथ वगैरह पकड़ता है, वो रेजिस्ट करती है, तो उसके पास चाकू होता है और उसको 14 बार मार देता है वहीं पर, 11 बार और फिर 3 बार और, और उसके माँ और बाकी लोग आते हैं, तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और 24 घंटे के अंदर उसकी डेथ होती है। पर उस 24 घंटे में वो एक बार वो जागती है और तब वो कहती है कि मैंने उसको माफ कर दिया, मे ही बी विथ मी इन हेवन टुगेदर, मैंने उसको माफ कर दिया है। और फिर ये जो लड़का होता है 20 साल का, उसको सजा होती है 27 साल, और जब वो जेल में रहता है तब भी वो स्वीकार नहीं करता है कि मैंने कुछ पाप किया या कुछ किया, वो विकारी किस्म का व्यक्ति होता है, पर जेल में उसको साक्षात्कार होता है उस मैरिया का, और वो जेल से छुट्टा है 1970 में, अभी अभी। फिर उसकी मां के पास जाता है, माफी मांगता है, उसकी मां उसे माफ कर देती है और फिर वो धार्मिक व्यक्ति बनता है, और अभी 1980s में अभी अभी उसने शरीर छोड़ा। सत्य घटना, वो जो मैरिया थी उसको संत की पदवी दी गई है, ईसाई धर्म में सबसे कम उम्र की दिस गर्ल, और उसने एक ही काम किया बस, कौन सा, माफी कर दिया उसको। एक विस्तार है ब्लेम गेम, हमारे जीवन में जो कुछ हुआ है हमने किसी को दोषी ठहरा कर रखा है और उसको अब तक माफ नहीं किया है, हम सोचते हैं ये उसकी वजह से हुआ है, अगर वो नहीं होता तो मैं आज शायद बहुत आगे होती, मेरी सेवाएं बहुत आगे होती है, उसने मुझे रोक दिया, उसके कारण जीवन में दुख है। ब्लेम करना ये जबरदस्त विस्तार होता है, जब तक क्षमा वो द्वार है जहां पर सारे ब्लेम, सारे दोषारोपण आकर रुक जाते, क्षमा वो स्थान है, क्षमा वास्तव में सबसे बड़ा दंड है अपराधी का, अपराधी को अगर दंडित करना है क्या करेंगे उसको, क्षमा कर दो बस, यही उसका सबसे बड़ा दंड है। तो ब्लेम मन में है तो कितने संकल्प चलते हैं, कितनी इमोशंस, कितने भावनाएं, कितना विस्तार होता है। क्या ऐसा व्यक्ति योग लगा सकता है? योग में तो क्या है, तुमको बिंदी बनना है और सारे विस्तार को भूलना है, यहां कहां से योग और कहां से ज्ञान, कुछ नहीं तो इसमें कभी नहीं हो सकता। फिर है सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद ही को दोषी ठहराना, मेरी वजह से यह सेवा कम नहीं ऐसी हो रही है, मैं हूं इसलिए यह सेवा नहीं हो रही है, हम लोग लेट आए ना इसलिए यह प्रोग्राम ठीक से नहीं हुआ, क्या करूं बाबा मुझे उठाता भी नहीं, बोझ हूं यहां पर, अपने विषय में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, इतना खुद को ब्लेम करना, इतना खुद को ब्लेम करना कि जैसे कि मेरे वजह से मेरे मां बाप दुखी है, मेरे वजह से यह सेवाएं नहीं हो रही है। ये भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, ये भी जबरदस्त विस्तार है, जबकि भगवान समान दे रहा है, जबकि भगवान कह रहा है तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, और हम कह रहे हैं कि हम कुछ भी काम के नहीं है, ये कोई हम नम्रता नहीं है यहां पर नहीं तो इसको भी नम्रता समझा जाता है, पर ये नम्रता नहीं है, ये तो हीनता है, इंफीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा ही है ये भी, खुद को कम लेखना, मेरे से ये नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता, ये मुझ में हिम्मत ही नहीं है, बाप समान बनना है बने जिसको बनना है, हमारा काम नहीं है ये, हम अपना वो कौन सा भाई था वो कहता था मुझे ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, मैं खाली लक्ष्मी नारायण उधर से आएंगे तो लक्ष्मी नारायण सम्राट आ रहे हैं बस इतना कह के बैठो, अब इसके लिए अमृत वेले क्या जरूरत है, इसके लिए मुरली का चिंतन विंतन थोड़ी जरूरत है, इसमें तो ज्ञान में चलना काफी है, बस प्योर रहो इतना करूंगा। तो इतना ही लक्ष्य लक्ष्य पहले से फिक्स करके रखा है, अब जैसा लक्ष्य होगा वैसे ही लक्षण हो गए। लक्ष्य इतना ही है कि लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं और लक्ष्मी नारायण जा रहे, या फिर लक्ष्मी नारायण से मिलने बाजू का राज का देश राजा आ रहा है, बस संदेश ही देना है, फिर तो क्या, इसमें इतनी ये सब करने की आवश्यकता नहीं, द्वारपाल प्रतिहारी ये सब बन जाना बस, और क्या। तो खुद को नीचे कम लेखना या फिर सेल्फ विक्टिमाइज करना, खुद को दोषी ठहराना, ये एक, और दूसरा इन्फीरियरिटी, और या तो खुद को बड़ा ही ऊंचा समझना, बड़ा महान समझना, श्रेष्ठ समझना, दूसरों को कम ज्ञानी समझना। तीव्र पुरुषार्थियों का सबसे बड़ा दोष क्या है? तीव्र पुरुषार्थियों का प्रॉब्लम क्या है? तीव्र पुरुषार्थियों का प्रॉब्लम उनका तीव्र पुरुषार्थ नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ का घमंड। अमृत वेले उठने वालों का प्रॉब्लम क्या है? अमृत वेला नहीं। हम जल्दी उठते हैं, वो नहीं उठता है। फिर उसके बाद गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव, मेरे से पाप हो गया, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता है, बाबा ने बोल दिया है पहले एक का 100 गुना, और मेरे से जो पाप हुआ है इसका तो कुछ जघन्य अपराध है, इसको माफ ही नहीं किया जा सकता है। क्या ऐसी आत्मा पुरुषार्थ कर सकती है? इसके विस्तार में खोए हुए है गिल्ट कॉन्शियसनेस। इसकी विधि क्या है? क्या करें? हुआ है पाप, अब क्या करें? भक्ति में क्या करते हैं? अगर कोई पाप होता है तो धर्माऊ निकालते हैं, पुण्य करते हैं। पाप हो गया ब्राह्मण जीवन में तो क्या करो आप? पश्चाताप। और पश्चाताप की विधि क्या है? औरों का कल्याण करो। खुद अपवित्र बन गए, अब पवित्र बनने की विधि क्या है? दूसरों को पवित्रता सिखाओ, दूसरों को पवित्रता का ज्ञान दो। कितनी अच्छी विधि है, सिखाते सिखाते खुद पवित्र बन जाएंगे। तुम्हारा ज्ञान देना ही पश्चाताप है, तुम्हारा कोर्स कराना ही तुम्हारा अपना प्रायश्चित है, उसका छोड़ो क्या होगा, वो आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं। सेवा किस लिए करनी है? स्वयं के प्रायश्चित के लिए, क्योंकि जो कुछ भी पाप भूल त्रुटि गफलत विकर्म पाप हुए हैं उनका प्रायश्चित तो उसी से होगा, सेवा से होगा। इसके लिए सेवा नहीं छोड़नी है। लोग भूल होने के बाद पाप होने के बाद सेवा छोड़ देते हैं, कहते हैं हम योग्य नहीं, हम लायक नहीं है। लायकी आएगी कहां से? सेवा से। तो सेवा चालू रखनी है, चाहे कुछ भी होते रहे, परंतु अंदर स्वयं की चेकिंग चालू रहे। तो गिल्ट कॉन्शियसनेस, उसके बाद क्या ये? क्या? हाँ, जनरलाइज। जंपिंग टू कंक्लूजन, एक होता है जंपिंग टू कंक्लूजन, सीधा निष्कर्ष पर पहुंचना। किसी को देखा ये लेट आता है, अच्छा ये रोज ही लेट आता होगा, फाइनल कर दिया, उसको मत लेना, उसकी आदत ही है लेट आने की। सीधा जंप टू कंक्लूजन, एक अच्छा उसके जैसा ही ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन अर्थात कोई एक फेल हो गया स्कूल में, इसको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, अभी छोड़ दो, क्यों कर रहे हो पढ़ाई? तुम्हारा पढ़ाई करने से कुछ मतलब ही नहीं है, जनरलाइज कर दिया पूरा। और फिर है एक पर्सनलाइजेशन, कोई भी चीज को व्यक्तिगत लेना। किसी ने कुछ और भाव से कही है पर हम समझना है, मुझे जानबूझ के। आज कहा ना माया डस्ती है, माया क्या करती है? डस कर तुम्हारे ऊपर बैठ जाती है। इधर डसती है और इधर बैठती है। तो ये इसने जानबूझ के मुझे दुखाने के लिए ये शब्द कहे। हर चीज को पर्सनल लेना, जनरल में कहा हुआ है सबके लिए, पर नहीं, ये उसी के लिए। क्लास में बैठे हैं, इसने जानबूझकर मुझे ध्यान में रखते हुए ये बात कही है। टॉन्ट, इनडायरेक्ट टॉन्ट। हर चीज को पर्सनल लेना। दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं और मैं जाते ही बातें करना बंद कर दिया, मेरे ही बारे में बात कर रहे होंगे। जरूर कुछ था। बंद क्यों कर दिया फिर, बातें चालू रखनी चाहिए थी। मैं जैसे ही गया चुप हो गए दोनों। तो ये जो है ना, ये बड़ा खतरनाक सारी चीजें है। किसको क्या पड़ी है तुम्हारी, हर एक अपने दुख दर्द में डूबा हुआ है। किसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारा जो है इसको विस्तार कहते हैं। क्या करो इसको, बाबा ने कहा बिंदी लगा दो, समा दो, बिंदी बन जाओ, बिंदी में समा दो, फुल स्टॉप। पहले मानो कि ये है, ये चल रहा है, हवा थोड़ी निकालो। हवा थोड़ी निकालो, गाड़ी बाहर नहीं निकलेगी जब तक हवा नहीं निकालते। अहंकार में बहुत हवा भरी है टायर में। टायर ही निकाल दो, टायर मत निकालो, गाड़ी चलेगी नहीं। हवा निकालनी है। अहंकार, घमंड, मैं करता हूं, मेरा। क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म बातें हैं ये जो सारी यहां पे बताई, कि ये लोगों ने अध्ययन किया मनुष्य मन का, मनोवैज्ञानिकों ने देखा मनुष्य कैसे बिहेव करता है। जब उसको ब्लेम किया जाता है, एक और एक है जस्टिफिकेशन, जब किसी को ब्लेम किया जाता है सबसे पहला क्या करता है वो, मैंने ये नहीं किया, ये मेरे वजह से नहीं है, ये इसने किया है, मुझे क्या पता, मैं तो अभी आया। ये मेरे पहले मेरी ड्यूटी में नहीं हुआ, ये किसी और की ड्यूटी में हुआ। एक भाई ने अपना अनुभव लिखा है ज्ञानामृत में कि या मधुबन में ट्रक आया था, तो वो मिलने आया था बाबा से, तो वो ट्रक थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर चला गया और बहुत नुकसान हो गया। ये वो नहीं है, ये दूसरा भाई है। ये दूसरा भाई है। तो अव्यक्त बाप दादा इधर आए थे बाबा के कमरे में, तो बीच सीधा बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा मेरे हाथों से ये गलती हो गई और दो तीन गाड़ियों का नुकसान हो गया, क्या करूं, क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चे नथिंग न्यू, फुल स्टॉप, बस कुछ भी नहीं कहा, इतना ही कहा, नथिंग न्यू। जितना एक्सप्लेनेशन देते जाओगे, नहीं मेरी गलती नहीं थी, इसकी गलती थी, उसकी थी, ये था वो था, कुछ नहीं, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है ऐसे डिस्कशन का। हो गया हो गया, अब उसको बदला तो जा नहीं सकता, फुल स्टॉप, चुप हो जाओ, लगाने दो सबको ब्लेम, चुप रहो, कुछ करना कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। हमारी अति आदरणीय दादी रुक्मिणी दादी पहले ट्रॉमा में थे, फिर वहां से अहमदाबाद शिफ्ट हुए थे, वहां कुछ दिन थे, तबीयत तो नाजुक ही थी। कल रात को यहां लेके आए थे क्योंकि डॉक्टर ने कहा आप ले जाओ इनको, तो कल रात को 7:30-8 बजे यहां आए ग्लोबल में, और रात को 12:30-1 बजे के बीच उन्होंने शरीर छोड़ा। तो हम सभी एक 5 मिनट शक्तिशाली योग में बैठेंगे और वो आदि रतन अनन्य आत्मा उनको शांति का दान देंगे। ओम शांति।